Oye,
oiga yo.
Gopi jana balaba girivara dhare Gopi jana balaba girivara dhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banacha Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jagannath
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
वो आदमी वो ही चप्पल पहन रहा है ना चप्पल पहन कर गया है
Gopi Jana Balaba Girivara Dhare Gopi Jana Balaba Girivara Dhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Om Vishnu Bad Brahmaspraja Kacharya स्वान ग्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुमान त्रिलापृष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग भागवतम से पढ़ रहे हैं चौथा स्कंद अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन श्लोक संख्या 9 अत्र ते कथिस्से अमम इतिहासम पुरातनम पुरंजनस्य चरितम् निबोधा गदता ममा अत्रते कथिस्से अत्रते कथिस्से उम अत्रते कथिस्से उम इतिहासं पुरातनम् इतिहासं पुरातनम् पुरंजनस्य चरितम् पुरंजनस्य चरितम् निबोध गदतो मम अत्रते कथिस्सेस्मो अत्रते कथिस्सेस्मो इतिहासं पुरातनम् पुरंजनस्य चरितम् निबोध गदतो मम माता जी अत्र यहां पर ते आपसे कथयिष्ये कहूंगा अमुम इस प्रसंग में इतिहासम इतिहास पुरातनम अत्यंत प्राचीन पुरंजनस्य पुरंजन के विषय में चरितम उसका चरित्र उसका आख्यान निबोध समझने का यत्न करो। गदत ममा, मैं सुना रहा हूं। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूं, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तात्पर्य, नारद मुनि एक दूसरे प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह था राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन बरहिसर का इतिहास है, जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है। दूसरे शब्द में यह रूपक या अन्योक्ति है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले अध्यायों में मिलती है। चूंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंध कहानियां सुनना चाहता है, अतः नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन बरहिसत का ही इतिहास था। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्सना नहीं की, जिनमें पशु बलि दी जाती थी, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। जयदेव गोस्वामी ने कहा, निंदसि यज्ञ वैधेरह श्रुतिजातम। श्रुतिजातम शब्द बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने के लिए वैदिक प्रमाण का विरोध किया। क्या आवाज आ रहा है? बरसात का समय है। फलतः जो वेदों के अनुयायी हैं, वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते। चूंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है। नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन बरहिसत को बता देना चाहते हैं कि कर्मकांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्मकांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, वे मूढ़ दुष्ट कहलाते हैं। मूढ़ अत्यंत कठिनाई से जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच यह देखने को मिलता है कि अनेक लोग इसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे कर्म में लगे रहने वाले मूढ़ है। कहा गया है, उपदेशों ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध हो जाता है, और उपदेश से लाभ उठाने के बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। चूंकि नारद मुनि इसमें भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने प्रत्यक्ष रीति से राजा को उसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरे की बाली पहनने के लिए नाक या कान छिदाना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्मकांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई भविष्य में
लखपति बनकर सुख उपभोग करना चाहता है तो उसे इस जीवन में धन संचित करने के लिए अत्यधिक श्रम करना होगा। यही कर्मकांड है। जो इस मार्ग के प्रति अनुरक्त है उन्हें सभी प्रकार के खतरे सहने पड़ते हैं। नारद मुनि राजा प्राचीन बरहिषत को दिखा देना चाहते थे कि सकाम कर्प में लगे रहने के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वो विषयी कहलाता है। विषयी का अर्थ है विषय का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना सोना संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना। नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा के बहाने यह बताना चाह रहे हैं कि खाना सोना संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना ये सारे कर्म अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक है। इतिहास तथा पुरातन शब्द यह बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पड़ी भवरण जले तरी बारे ना देखी उपाय। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूं, अब इसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, अतः हर एक का अपना अपना प्राचीन इतिहास है। मूर्ख भौतिक वैज्ञानिकों ने विकास संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं जिनका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु वास्तव में अपनी विकास असली विकास यह नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास सिद्धांत की व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप में करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन श्लोकों से हमें शिक्षा मिलती है कि जो प्रचारक होते हैं उनको किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए। प्रचारकों का एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है लोगों का मन कृष्ण में लगाए। किसी न किसी प्रकार से लोगों का मन कृष्ण में लग जाए, यही प्रचारकों के जीवन का लक्ष्य है। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका प्रचार, उनका रहन सहन सब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग कृष्ण भावना भावित हो सके। यही प्रचारकों का असली परिचय है, जिसको देख करके लोग कृष्ण का स्मरण कर सके, जिसको सुन कर करके जिसके आचरण से लोग प्रभावित हो सके। और इनमें से दो प्रचारकों का हम कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रथम प्रचारक हैं भगवान शिव जो महाजन हैं, और दूसरे प्रचारक हैं नारद जी। दोनों महाजन हैं और दोनों टूट पड़े एक ही परिवार पर। टूट पड़े मतलब कि प्रचार करने के लिए, उनका धन लूटने के लिए नहीं। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से महाराज प्राचीन बरहिषत के जो पुत्र थे उन लोगों को महाराज प्राचीन बरहिषत ने आदेश दिया कि पुत्रों तुम लोग सृष्टि करो, क्योंकि हमारे पिताजी का यही आदेश है, तुम लोग भी इसी काम में लगो, फैमिली बिजनेस में लगो। हाँ, फैमिली बिजनेस है सृष्टि करना। इसमें लगो। ये पहला फैमिली बिजनेस है, प्रोडक्शन, पहला प्रोडक्शन है बच्चा पैदा करना। पहले जमाने में यदि किसी को बच्चे नहीं होते थे तो एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह कराएंगे, फिर भी बच्चे तीसरा विवाह कराएंगे, हैं तीन चार विवाह कराएंगे ताकि बच्चे पैदा हो। पहला ये बिजनेस है बच्चा पैदा करना। तो महाराज प्राचीन बरिसत वैसा ही किए, अपने पुत्रों को कहे कि तुम लोग फैक्ट्री चालू करो, तो कहे कि ठीक है लेकिन अभी हम तपस्या कर करके आएंगे, पहले सीख करके आएंगे। और सीखने जा रहे थे, बीच में मिल गए भगवान शिव। तो भगवान शिव उन लोगों को प्रचार उचार कर दिए। वे भगवान शिव नारद जी के समान प्रचार नहीं करते हैं, दूसरे रूप से करते हैं। सब प्रचारकों का अलग अलग शैली होता है प्रचार करने का। हरदास कहां है? नहीं, इधर कहां है ना, यहां पर मर गया है। उसका शैली अलग है प्रचार करने का है। अब दूसरे का और कौन है? हाँ, गोकुलेश्वर प्राणेश्वर प्रभु, इनका अलग है शैली। तो अलग अलग शैली से लोग प्रचार करते हैं। तो भगवान शिव का शैली अलग है प्रचार करने का। वो नहीं कहे कि तुम लोग बाई प्रोडक्शन मत करो, करो लेकिन भगवान के प्रसन्नता के लिए। पहले भगवान को जान लो उसके बाद में। अब उन लोगों को पिछले अध्याय में हम लोग सुने कि भगवान शिव के द्वारा जो स्तुति की गई थी उसके अंत में कहते हैं गीतम मेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसम परमात्मन स्वतम जपंत एकाग्रधिय तपो महत चरधु अंते तत आपसये स्थितम। हे राजकुमारो, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वह परमात्म स्वरूप श्री भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। वो प्रचार किए थे किसके लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार में कोई काम बाकी नहीं रह जाता है। तो हम लोगों के समस्त कार्यकलापों का एकमात्र लक्ष्य है येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, कृष्ण में मन लगे ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। मैं तुम्हें इस स्तुति को सुनाने की सलाह देता हूं, स्तुति को सुनाने की सलाह देता हूं, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। तो उनको तो सुनाए हैं और कहे तुम दूसरों को भी सुनाना, प्रचार करो। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभीष्ट प्राप्त हो सकेंगे। तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ। तो भगवान के प्रसन्नता संबंधी यानी भगवत भक्ति संबंधी ज्ञान भगवान शिव उनके पुत्रों को दे दिए थे। तो पुत्रों का तो कल्याण हो गया, अब बाप का भी कल्याण होना चाहिए। बेटे गए हैं तपस्या करने के लिए, किसके लिए? पुत्र उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। तो सब बाप क्या करते हैं? धन कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? चतुर्भुजदास, बच्चों के लिए ना। सब बाप धन कमाते हैं बच्चों के लिए, अपने फटा पुराना पहने रह जाएंगे, अपने कम खाएंगे लेकिन बच्चों को, अपने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बच्चों को आईआईटी में एडमिशन कराएंगे, अमेरिका पढ़ाने भेजेंगे बच्चों को। संसार में सब लोग बच्चों के लिए सब काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। तो वैसे ही मानो प्राचीन बरहिसत भी बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे थे। और वे क्या काम कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। जय श्री श्री गौर निताय की जय। सकाम कर्म कांड में लगे हुए थे। श्लोक 3 से इसको समझना चाहिए क्योंकि यहां से एक अलग प्रकार का प्रसंग शुरू हो रहा है। यहीं से पुरंजन का कथा शुरू हो रहा है लेकिन उसके पहले का बात समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन बरहिसत लगे हुए थे कर्मकांड में, प्राचीन बरहिसम छत्तः कर्मः कर्मसु आसक्त मानसम, कर्मसु आसक्त यानी सकाम कर्म में लगे हुए थे। सकाम कर्म का परिणाम क्या होता है? ज्यादा वस्तु की प्राप्ति। निष्काम कर्म जो है वो दुख लाता है, जो सकाम कर्म है वो तथाकथित भौतिक सुख लाता है, धन संपत्ति की वृद्धि होगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी इत्यादि इत्यादि। तो बेटा इधर तपस्या करने गए हैं और तपस्या में लग गए हैं, और उधर उनके पिताजी सकाम कर्म में लगे हुए हैं, धन बढ़ाने के वृद्धि में लगे हुए हैं। नारद जी बड़े दयालु हैं। वैष्णव जो होते हैं वो अकारण ही दयालु होते हैं, जैसे भगवान अकारण हैं, अकारण दयालु होते हैं, कारण रहित दयाल, वैसे ही वैष्णव भी कारण रहित दयाल हैं। वो कारण से नहीं, अकारण ही किसी पर दया कर देते हैं। तो भगवान नारद जी यहां पर प्राचीन बरहिसत पर दया करने के लिए उनके पास पहुंच गए। इसलिए मैत्रेय जी कहते हैं नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालु प्रत्यबोधयत। नारद जी के लिए यहां पर कृपालु शब्द का प्रयोग किए हैं मैत्रेय मुनि। कहते नारद जी कैसे हैं? हे विदुर जी, वे कृपालु हैं। सुखदेव गोस्वामी पर हे परिचित महाराज, नारद जी कैसे हैं? कृपालु हैं। वो कृपा बस वहां पर आए। नारद जी की कृपा का कारण अलग अलग होता है। मृगारिक पर कृपा करने के लिए नारद जी उस रास्ते से चले गए। नारद जी किसी रास्ते से जा सकते थे, क्या जरूरत था कि उसी रास्ते से जाए जहां पर वो बहेलिया अपने धनुष बाण पर धनुष पर बाण चढ़ा करके बैठा है, या यक्ष के जो पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीव, वे लोग नंगा स्नान कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, नारद जी को उधर से जाने की जरूरत क्या था? उसी रास्ते जा सकते थे, लेकिन नारद जी उनको कृपा करने के लिए उसी रास्ते से गए। तो नारद जी की एक कृपा है, इसलिए यहां पर कृपालु। नारद जी का यहां पर गुण बताया गया कि नारद जी कैसे हैं। नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ, अध्यात्म तत्व के जानने वाले नारद जी हैं, तत्व विशारद हैं नारद जी। और फिर कैसे हैं? कृपालु, वे कृपालु हैं। और तीसरा गुण क्या है? प्रतिबोधयन, और प्रचार करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, प्रतिबोधयन। तीन गुण नारद जी का यहां पर बताया गया है। तो वैष्णवों में, प्रचारकों में तीनों गुण होना चाहिए प्रचार करने के लिए। पहले तो कृपा होनी चाहिए। जब कृपा नहीं होगी पति जीवों के प्रति, तो आश्रम में प्रसाद खा करके आराम करेंगे, यही करेंगे ना। जब कृपा होगी पति जीवों के प्रति, तो प्रसाद खाकर तुरंत बुक बैग लेकर के बाहर जाएंगे पुस्तक वितरण करने के लिए, प्रचार करने के लिए। ये है कृपा, गो आउट एंड प्रीच, ये है कृपा। तो नारद जी कृपालु हैं, वैष्णवों का एक गुण है कृपालु। वैष्णव कैसे होते हैं? कृपालु होते हैं। तिथिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजाशत्रव शांत साधव साधु भूषणम। कारुणिका, कृपालु, एक गुण है वैष्णवों का, कृपालु होते हैं। तो नारद जी का एक गुण है, वो कृपालु है। दूसरा कि भगवत तत्व विज्ञान को वैष्णवों को भली भांति जानना चाहिए। जब हम कुछ जानेंगे तो हम प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि पुस्तक वितरण करना अच्छा काम है, लेकिन कम से कम जान लो कि उस पुस्तक में लिखा क्या हुआ है, इतना तो कम से कम करो, यानी उन पुस्तक को पढ़ लो और बाद में प्रचार करो। तो भगवत तत्व विज्ञान ये जानना चाहिए। ज्ञान हम तब दे सकते हैं जब ज्ञानी हो, जब ज्ञानी नहीं तो ज्ञान क्या दे सकते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी ही ज्ञान देता है और ज्ञानी के पास जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्व का दर्शन कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, जो सेल्फ रियलाइज है, तो नारद जी वैसे तत्वज्ञ हैं। और प्रतिबोधयत, उस ज्ञान को संचार करने में एक्सपर्ट हैं। उनको जगाइए, उनमें माया संचार कर रही है। ज्ञान को संचार करने में, प्रचार करने में नारद जी बड़े एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे नारद जी का मुलाकात हो गया प्राचीन बरहिषत से। प्राचीन बरहिषत अपने इस कर्मकांड में लगे हुए थे। एक ही योजना था, धन कमाओ योजना, बैंक बैलेंस बढ़ाओ योजना। आजकल के ऐसे ही बहुत प्राचीन बरहिषत लोग हैं जो बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं। आजकल नारदों की कमी है, प्रचारकों की आज कमी है, जो जाकर के इन लोगों को प्रचार करे, बतलाए। नारद जी मिलकर के सीधे बात कह रहे हैं, उनके बात को खंडित नहीं कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। देखिए, ये भी प्रचार करने का तरीका है। चोर को तुरंत चोर कह दो तो सीधे आपको अटैक करेगा। चोर को चोर मत कहो, भाई अच्छा काम कर रहे हो, बल्कि अच्छा कह दो, ठीक है, लेकिन बाद में भले प्रचार करो। तो नारद जी यहां कंडेम न कर करके कहते हैं श्रेयस्तम कतमतंद्राजन कर्मणात्मन इहसे। नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, हे राजन, यानी आप समझ लीजिए कि नारद जी वहां पर आ गए तो नारद जी खातिर बातिर हुआ वहां पर, मतलब कि अति सत्कार महाराज प्राचीन बरहिषत किए। वो इतना तो जानते थे कि नारद जी महाऋषि हैं और उनको आसन दे करके बैठाए और मानो पूछने लगे। कभी कभी जो लोग नहीं भी जानते, हम लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं आप हाथ देखना जानते हैं क्या, आप लड़ा पढ़ सकते हैं क्या है? वो लोग पूछते हैं, के पूछते हैं, क्या थोड़ा देखिए ना, हमारे बहुत विपत्ति है, बड़ी परेशानी है। और जो जानते हैं वही पूछते हैं कि प्रभु जी मैं बड़ा परेशान हूं, बताइए कैसे हमारी परेशानी दूर हो सकती है। तो मानो प्राचीन बरहिषत ऐसा कुछ पूछे होंगे कि बेटे गए हैं तपस्या करने के लिए, अब आएंगे तो कुछ धन दौलत चाहिए, उस काम में मैं लगा हूं, यह काम ठीक कर रहा हूं कि ठीक नहीं कर रहा हूं, नारद जी आप बताइए सही बात क्या है, सही क्या करना चाहिए। तब नारद जी उनसे ही उल्टा प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज प्राचीन बरहिषत, जिस काम में आप लगे हुए हैं, इस काम से आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं श्रेयस्तम, क्या आपका इसमें कल्याण होगा, ये जो काम कर रहे हैं, ये धन कमाने का काम कर रहे हैं, क्या इनडायरेक्टली कह रहे हैं, क्या ये कल्याणमयी कार्य कर रहे हैं। दो चीज होता है, एक कहलाता है श्रेयस और एक कहलाता है प्रेयस। महाराज प्राचीन बरहिषत प्रेयस कार्य में लगे हुए थे। प्रभुपाद जी कहते हैं इमीडिएट बेनिफिट An अल्टीमेट बेनिफिट, इमीडिएट हैप्पीनेस एन अल्टीमेट हैप्पीनेस, इमीडिएट में तुरंत मिलने वाला, उसे प्रेयस कहते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को खेलना अच्छा लगता है, खेलने में बहुत आनंद आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये है प्रेयस, इमीडिएट उनको आनंद आ रहा है। लेकिन बाप मां जानते हैं कि उनका कल्याण किसमें है, वो पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो कि पढ़ना उनके लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो क्या है, श्रेयस है। हालांकि दोनों प्रेयस ही हैं, लेकिन कंपेरिजन में बच्चे जो खेल रहे हैं, पप्पू क्या नाम उसका, पद्म भूषण है, पुरुष भूषण, चलो पद्म भूषण पुरुष भूषण, तो खेलना जो है वो प्रेयस है, लेकिन पढ़ाई करने जाना वो श्रेयस है, अत्यंतिक कल्याण, तो कल्याण उसी में होगा। इसीलिए नारद जी यहां पर श्रेयस का बात कह रहे हैं कि हे महाराज, आप जो काम कर रहे हैं क्या श्रेयस काम कर रहे हैं? आपका अत्यंतिक कल्याण इसमें हो जाएगा। अब वो कुछ कह नहीं पाए, तब कहते हैं कि श्रेयस क्या है, कल्याण क्या है, कल्याण किसे कहते हैं, संसारिक लोग कल्याण किसे कहते हैं? अब संसारिक भाषा में कहते हैं दुख हानि सुखावाप्ति, दुख खत्म हो जाए और सुख की प्राप्ति हो, इसी को लोग कहते हैं योगक्षेम। दुख हानि, दुख खत्म हो जाए और सुख वापसी, सुख की प्राप्ति हो। श्रेय तन इह च इष्यते, इह मतलब इस संसार में, इस संसार में लोग कल्याण का जब बात किया जाए तो लोग समझते हैं कल्याण क्या है, दुख खत्म हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, बस यही ना समझते हैं लोग, कल्याण इसी को मानते हैं संसार में। इसे कहते हैं श्रेय तन इह, तन मन इसी को, यह मतलब संसार में, इस संसार में इसी को लोग श्रेय मानते हैं। लेकिन इस श्रेय नहीं है, और इस श्रेय में आप लग गए हैं, लेकिन यह श्रेय नहीं है। तो स्वाभाविक है उन्हें प्रश्न हुआ, यदि यह श्रेय नहीं है तो श्रेय है क्या? तब राजा प्रश्न पूछे, कह करे अब तक से जो मैं सुना था जानता था, मैं समझता सबसे बड़ा कल्याण यही है कि दुख खत्म हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, सबसे बड़ा कल्याण यही है, लेकिन आप कहते हैं यह श्रेय नहीं है, तो है कौन, मैं जानता नहीं हूं। तब राजा हां जो कहते हैं न जानामि महाभाग परम कर्माप विद्धति ब्रूही मे विवलम ज्ञानम एन मुच्चेय कर्म भी। नारद जी के संग से ही बल्लभाचार्य कहते हैं कि नारद जी का जब संग हुआ प्राचीन बरहिषत का, तो उनका बुद्धि निर्मल हो गया। दर्शन अपवित्र कर ए तुमार गुण, ये वैष्णव का गुण है कि दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। नारद जी के दर्शन से ही मानो उसका चित्त पवित्र हो गया और दो चार बात हो गया श्रेयस का, वो समझ गए कि नारद जी जिसको मैं श्रेयस मान करके कार्य कर रहा हूं उसको नारद जी का अनुमोदन नहीं है। तब इसलिए उन्होंने कहा न जानामि महाभाग, कम से कम ऑनेस्ट हैं, कम से कम प्राचीन बरहिषत ऑनेस्ट हैं, यदि कुछ नहीं आता है तो दूसरे वैष्णवों से पूछने में कोई लज्जा नहीं लगती है, लगनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं पूछूंगा मैं तो क्या समझेगा, समझेगा बुद्ध कुछ जानता ही नहीं है, इसलिए हम पूछते नहीं है। अरे क्या तकलीफ है पूछने में, नहीं जानते हैं तो पूछ लो। ज्ञान बड़ा और छोटा नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान किसी से प्राप्त कर सकते हैं। सठ गोस्वामी गण जब वृंदावन में थे तो जीव गोस्वामी कथा कहते थे, रूप सनातन सब सुनते थे, चतुष कुमार लोग, कोई व्यक्ति कथा कहता था वो लोग सुनते थे। सुखदेव गोस्वामी वयस में बड़े छोटे थे, उनके सामने कथा सुनने के लिए परिचित महाराज बैठे हुए थे जो कि सम्राट थे, एज में भी बड़े थे, उतने ही नहीं उनके पिता सुत आदि नारद बहुत लोग बैठे हुए थे कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कथा हरि कथा है। प्रश्न करने में नीच ऊंच का भाव नहीं होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। जब नहीं आता हो तो पूछने में कोई तकलीफ नहीं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। महाराज प्राचीन बरहिषत राजा हैं, पुत्रों के बाप हैं, नारद जी बाल ब्रह्मचारी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रश्न किए, न जानामि महाभाग। गुरु के पास जाएं तो अपने को मूर्ख समझें तब कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अपने को चालाक समझेंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान जैसे एक ग्लास है, पानी भरा रहेगा तो इसमें कहां, खाली खाली ग्लास लेकर जाओ तब पानी भर सकते हो। तो ना जानामि महाभाग, नारद जी को यहां पर महाभाग कहा गया है। दो कारण है महाभाग कहने का। एक कारण यह है कि नारद जी कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के भजन में कीर्तन में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो कृष्ण का भजन करता है वो महाभाग्यशाली है, जिसके दिल में कृष्ण आ गए हैं वो महाभाग्यशाली है, महाभागवत है। कंस भी वसुदेव जी को महाभाग कहा है भागवतम में, जब कृष्ण देवकी के गर्भ में आए हैं उस समय, सॉरी जो कृष्ण चले गए उस समय, महाभाग कहा है भागवतम में। तो महाभाग इसलिए कि नारद जी कृष्ण के भक्त हैं, और दूसरा महाभाग इसलिए कि दूसरों को भी भाग्यशाली बना देते हैं संसर्ग से, अपने संबंध से। न जानामि महाभागम परम कर्म अपबद्धति। सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, श्रेयस क्या है, प्रेयस क्या है, मुझे इसके विषय में ज्ञान नहीं है। ब्रूहि में विमलम ज्ञानम, विमलम मतलब श्रेय ज्ञान, कल्याणकारी ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान, यानी भागवत कथा सुनाइए बस, अमल पुराण का कथा हमें बताइए, तो विमल ज्ञान हमें देने दीजिए। ये न मुचित कर्म भी, जिसके चलते हम कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम। कर्म फल से छुटकारा कोई पाना चाहता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम, और कोई साधन नहीं है, एकमात्र साधन है तो क्या है, भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही विमल ज्ञान है। 16 माला जप करना है विमल ज्ञान है, भागवत कथा सुनना है विमल ज्ञान प्राप्त करना है। तो भागवत कथा सुनने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अब कहते हैं कि अरे मेरी गति बड़ी खराब है। गृहेशु कुटधर्मेशु पुत्र दानाधनार्धि। हे नारद मुनि, मेरा धी मेरा बुद्धि लगा हुआ है कहां पर, गृहेशु कुटधर्मेशु। कुटधर्म मतलब चिटिंग रिलीजन, घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति जो घर गृहस्थी का भरण पोषण करने में लगा हुआ है वो कुटधर्म में लगा हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैतव धर्म कहा गया, धर्म पुरोजित कैतव उत्तर परम निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तवमत्र वस्तुयुगम तापत्रयोन मिलनम श्रीमद् भागवतम। ये भागवत जो है विमल ज्ञान है, और सब ज्ञान जो है कुटधर्म है। इसीलिए कह रहे हैं गृहेशु कुटधर्मेशु। गृहेशु मतलब घर गृहस्थी का चलाना, जो घर गृहस्थी को चलाने में लगे हुए हैं वो किस धर्म में लगे हुए हैं, कुट धर्मेशु चिटिंग रिलीजन, वो चिटिंग रिलीजन में लगे हुए हैं। और गृहेशु का व्याख्या कहते हैं उस कुट धर्म का, पुत्र दारा धन अर्थ धी। धी मतलब बुद्धि, बुद्धि लगा कहां लगा हुआ है, पुत्र पत्नी और धन कमाने में, बस इसी को कहते हैं कि जब परिवार का भरण पोषण यदि कोई कर लेता है तो समझना चाहिए कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है जो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है, लेकिन कुट धर्म है। कहते न परम बिंदते मुड्ढो भ्राम्य संसार वर्तमसु। मैं नहीं जानता हूं कि किससे मेरा परम कल्याण होगा। न परम बिंदते मुड्ढो, मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता है। मूर्ख समझता है कि बस घर गृहस्थी चला लिया, पुत्र परिवार का भरण पोषण हो गया, नो कंप्लेन नो फाइट, घर में परफेक्शन घर गृहस्थी का। लेकिन वो मूर्ख है, वो नहीं समझता है कि अकुट धर्म है। एक कुट धर्म हमें संसार चक्कर में हमेशा लाता रहेगा, इससे हमारा छुटकारा नहीं होने वाला है। तो नारद जी देखे कि इसके हृदय में सही में असली ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा है, असली ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब नारद जी देखिए किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। ये बात अपने दिल से महाराज प्राचीन बरहिष्ठ कहे और विमल ज्ञान जानना चाहते थे, तो नारद जी पहले उसे भय दिलाए, प्राचीन बरहिष्ठ को भय दिलाए। और भय दिलाने के संबंध में दो श्लोक में नारद जी उसको भय दिला रहे हैं। क्या भय दिला रहे हैं? भैया तू विमल ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो कर्म फल तुम्हारा जो है वो तुम्हारे पीछे थोड़े छोड़ने वाला है। वो भय दिखा रहे हैं। भो भो प्रजापति राजन पशुं पश्य त्वाध्वरे, हे राजन भो भो, अरे अरे अरे, ये तो देखिए जिन पशुओं का आपने अब तक से वध किया है, इस सकाम कर्म को करने के लिए विभिन्न प्रकार का यज्ञ कर कर करके वे सब के सब कहते निर्दयतापूर्ण निघ्रणेन, निर्दयता पूर्वक, कोई दया नहीं, निर्दयता पूर्वक आपने इन पशुओं का वध किया है। एक ही नहीं सहस्त्र सौ हजारों हजार पशुओं का आपने बलि चढ़ाया है। एते त्वाम सम प्रतीक्षन्ते, वे सब के सब तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो मैं देख रहा हूं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं। जो व्यक्ति कर्मों में लिप्त रहता है कर्म फल को समझ नहीं पाता है, जो कर्म फल से परे है वो कर्म फल और कर्म फल के परिणाम को समझ पाता है। तो नारद जी से परे हैं, समझ रहे हैं। एते त्वाम सम प्रतीक्षन्ते, सम मतलब कि एज इट इज, टिट फॉर टैट, जैसा आपने किया है ठीक वैसा ही करने के लिए सम प्रतीक्षन्ते, आपका वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। और प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे हैं, भूले नहीं हैं, अस्मरंतो वैव संतवम, वे लोग समस्त पीड़ाओं को याद कर रहे हैं। पीड़ा हुई थी, सब लोगों को अपने देह से प्रेम हो, चाहे चींटी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सबको अपने देह से प्रेम है। देह पर किसी प्रकार का दुख होता है तो यह श्लोक बतलाता है कि दुख याद रहता है, दुख याद रहता है। कुछ तो ऐसे भी क्रीपर हैं, कुछ ऐसे भी सॉरी क्रीचर हैं, जंतु हैं, जो आंख में देख लेते हैं। कोई अटैक किया उसके ऊपर, मार डाला, तो आपके चेहरे को आंख में देख लेंगे और आपका चेहरा उसके आंख में रहेगा। एक नहीं हजार जन्म लेगा तो भी आपका चेहरा बना रहेगा। जानते हैं सर क्रिचर, मैं पढ़ा हूं, लेकिन पहले हम लोग सुने थे सांप का है, नाग नागिन, आप लोग सुने कहानी नाग नागिन का, कि नाग और नागिन दोनों साथ हो, यदि नागिन को आप मार डालो या नाग को मार डालो, तो यदि जिसको मारे हो उसके आंख में तो आपका पूरा चेहरा रहेगा ही, यदि नागिन को मार डाले हो और नाग वहां पर नहीं था, नाग आ गया और वो देखेगा पहले नागिन के आंख को, और फर्स्ट क्लास भगवान क्या सुंदर कैमरा फिट किए हैं, और वहीं से वो फोटो खींच लेगा। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के आपको परेशान करेंगे। इस प्रकार से अन्य अन्य क्रिचर लोग भी हैं, अन्य पशु भी ऐसे हैं। हाथी को भी ऐसे कहा जाता है। हाथी एक बार आपसे गुस्सा, आप उनको परेशान किया और उसके आंख में आपका चेहरा आ गया तो कहीं देख लेगी तो भूलेगी नहीं, याद रखती है हथनी या हाथी। यानी वे तो कह रहे हैं कि ये लोग याद कर रहे हैं, वै वसम तवम, आपने जितना जितना पीड़ा दिया है गिन गिन करके बदला लेने के लिए तैयार हैं। लोग वेटिंग कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं लेंगे, अब जीवित हैं अभी। संपरेतम, मृत्यु के पश्चात कैसे बदला लेंगे यहां बताए हैं, हैं? कि सिंह से जो नुकीला है उस सिंह से छेद करेंगे, गुस्सा में मारेंगे। तो महाराज प्राचीन बरही को बहुत भय उत्पन्न हुआ और जब भय उत्पन्न हुआ तब हाथ जोड़ दिए, बस बस अब मैं कल्याण चाहता हूं। पहले तो कल्याण का बात पूछे ही, अब यहां पर भय दिखा करके अब असली कल्याण का बात बुझौल बुझा करके नारद जी बता रहे हैं। बुझौल जानते हैं ना, है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एलगरी है, तो एलगरी के द्वारा बुझौल बुझा रहे हैं अब नारद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुरंजन का जो इतिहास है ये राजा प्राचीन बरहिषत का ही इतिहास है और उन्हीं इतिहास को सुनाए हैं। ये जो बुझौल है, बुझौल के द्वारा मनगढ़ंत कहानी के द्वारा कभी कभी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए बतलाया जाता है। भागवतम में कई एक बार ऐसा बुझौल आया हुआ है। भववाटिका का जहां पर महाराज रघुगण को जड़भरत जी उपदेश दिए हैं वो भी बुझौल है। उसी प्रकार से यही नारद जी दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटों को बुझौल बुझा करके हरे कृष्ण वाला बना दिए, जानते हैं। ओ हैरस्व थे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, वे लोग गए थे तपस्या करने, जा रहे थे नारायण सर तपस्या करने के लिए, वो भी सृष्टि करना चाहते थे। तो नारद जी रास्ते में मिल गए और उन लोगों को बुझौल बुझाना शुरू कर दिए। 9 बुझौल बुझाए हैं, 9 प्रश्न किए हैं और ये 9 प्रश्न बुझौल के द्वारा, कहावत के द्वारा उन्होंने कहा, अरे तुम लोग सृष्टि करना जान चाहते हो, पहला प्रश्न किए, क्या तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत देख लिया है? जब तुम पृथ्वी का अंत नहीं देखे हो तो सृष्टि कैसे कर सकोगे? कितनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की तुम जानती नहीं हो, पृथ्वी का अंत नहीं किए हो तो क्या सृष्टि करोगे? दूसरा बुझौल बुझाए, अच्छा ये बताओ एक ऐसा देश है जिसमें एक पुरुष रहता है, क्या तुम जानते हो पुरुष कौन है? उस देश को जानते हो देश कौन है, वो पुरुष कौन है? तीसरा का एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसा बिल है जिसे प्रवेश तो कर सकते हो लेकिन बाहर निकलने का उसमें से कोई रास्ता नहीं है। चौथा प्रश्न किए कि एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, तुमने देखे हो उस स्त्री को, सृष्टि करने जा रहे हो, और एक ऐसा पुरुष है जो उस बहुरूपिणी व्यभिचारिणी का पति है। व्यभिचारिणी यानी वेश्या, हम लोग कहते हैं वेश्या का तो कोई पति नहीं होता है लेकिन एक ऐसा पुरुष है जो वेश्या का पति है। क्या जानते हो? छठा कहते हैं एक ऐसा नदी है जो दोनों दिशा में बहता है। जानते हो नदी कौन है? दोनों दिशा में बहता है। सातवां कहते हैं एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है। तुम जानते हो उस घर के विषय में और उन पदार्थों के विषय में? कहते हैं एक ऐसा अनहंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। उस हंस के विषय में क्या तुम जानते हो? और अंत में कहते हैं एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और वो अपने आप घूमता रहता है, घुमाना नहीं पड़ता है। क्या तुम जानते हैं इनको? कहा कि नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। कहा जब तुम जानते नहीं तो क्या सृष्टि करोगे तुम लोग, पहले जान लो। तो बाद में इस बुझौवल का उत्तर बतलाए, हम लोग शरण में पड़ गए कि नहीं बतलाइए गुरुदेव उत्तर इसका क्या है, आपने जो प्रश्न किया। तो उन प्रश्नों का उत्तर, पहला प्रश्न था कि जब क्या तुम लोग पृथ्वी का अंत कर लिए हो? जब तक से पृथ्वी का अंत नहीं करोगे तब तक से सृष्टि कैसे करोगे? तो पृथ्वी जो है वो लिंग देह है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ देह है। यदि उसका जैसे हम अंत नहीं करेंगे तब तक से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर का तो मृत्यु के द्वारा मुक्ति हो जाता है इस शरीर से, लेकिन असली मुक्ति जो है वो सूक्ष्म देह जो है, लिंग देह है, उस देह को खत्म करना मुक्ति है। तो जब तक से उसका अंत नहीं करेंगे तब तक से हम सृष्टि कैसे कर सकेंगे? दूसरा प्रश्न था एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है और वह पुरुष है परमात्मा, जो सब परिस्थितियों में जगा रहता है। देह सो जाता है और सूक्ष्म देह के साथ में आत्मा भी कभी सो जाता है, लेकिन वह पुरुष कभी नहीं सोता है, हमेशा जगा रहता है। वह सबका आश्रय है, उसका कोई आश्रय नहीं है। उसको जाने बिना क्या लाभ, क्या सृष्टि करोगे? एक ऐसा बिल है जिसमें जाने के बाद बाहर आने का रास्ता नहीं। वो बिल कौन है? यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वह बिल है, वैकुंठ है, जहां पर जाओ फिर आने का रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, कल जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। तो कहते यदि उसको नहीं जानते हो, वैकुंठ क्या है, वैकुंठ के विषय में नहीं जानते हो तो क्या सृष्टि करोगे? यानी कृष्ण भावना भावित बनो। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, वह है बुद्धि। बुद्धि एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। यही देख लीजिए, जितने लोगों सबका नाम जानता है बुद्धि, बुद्धि के द्वारा चतुर्भुज दास हैं, ये दास हैं, असीम हैं, ब्रज ये सब कैसे आएगा? बुद्धि के द्वारा, बहुरूपिणी है। और उसका एक पति है, वह है बद्ध जीवात्मा। एक ऐसा नदी है जो आगे और पीछे दोनों ओर बहता है और वह है माया। माया रूपी नदी है जो दोनों तरफ बहता है, बहती है, यानी सृष्टि और प्रलय, सुख और दुख दोनों। यही माया एक सेकेंड सुख देगी और यही माया दूसरे सेकेंड दुख देगी। तो एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बह रही है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना हुआ है, वह है महातत्व। 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है, वह है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण एक ऐसा हंस है जो भगवान का स्वरूप बताने वाला है। वह हंस के समान नीर और क्षीर विवेकी है। वो जैसे हंस नीर और क्षीर में भेद डालता है कि दूध क्या है, पानी क्या है, वैसे ही माया क्या है और भक्ति क्या है, भागवत से हम सीख सकते हैं। तो यह वह हंस है जिसकी कहानी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है, वो सब लोग जानते हैं, वह है काल चक्र जो चल रहा है। तो बुझौवल के द्वारा बुझा दिए। ऐसे बहुत से बुझौवल हैं भागवतम में, ऐसे बुझौवल पड़े हुए हैं। तो बुझौवल के द्वारा यहां पर नारद जी महाराज प्राचीन बरहिषत को ही बुझौ, एक दूसरा बुझौल मुझे याद आ रहा है, वो कबूतर और कबूतरी का है। भागवतम में हिरण्यकश्यपु जब अपने मां और हिरणाक्ष की पत्नी आदि को संतावना दे रहा था, तो उस समय एक कथा कहा था है? आप लोगों को कथा याद है, महाराज सुजग का कथा है? जो कैसे मारे गए थे, उनकी पत्नियां रो रही थी, तो जमराज जी छोटा बालक बनकर के आए और उन लोगों को उपदेश देने लगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बुझौल बुझाए, कहे देखो भाई, एक समय एक बहेली आया, एक हरा भरा फर्स्ट क्लास का कबूतर कबूतरी बाल बच्चों के साथ में रहते थे, हरा भरा परिवार था। बहेली आया, जाल बिछाया, उसने बच्चे चूचू चूचू करते चले गए चारा खाने के लिए, फंस गए। बेचारी कबूतरी थी, कबूतरी ने देखा कि बच्चे फंस गए हैं, वो भी उसमें कूद पड़ी बच्चों को बचाने के लिए, लगी रोने। नहीं, कबूतर पहले कूद पड़ा और कबूतरी रो रही थी, रो रही थी, उसे मालूम नहीं पड़ा। और उसी बीच बहेलिया धनुष बाण उठाया और मार डाला, सब खत्म हो गए। ठीक उसी प्रकार से तुम लोग रो रहे हो, रो रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि समय रूपी बहेलिया बाण चला देगा और तुम सब चले जाओगे। तो बुझौवल के द्वारा, ऐसे बहुत से बुझौवल हैं भागवतम में, बुझौवल के द्वारा। महाभारत में भी है, हैं वो एक पथिक का जो कि धन कमाने जा रहा है, किस प्रकार से वो फंस जाता है, तो हम लोगों का ही कथा है, कैसे धन कमाने जाते हैं, कैसे संसार में फंस जाते हैं, और उसका पैर फंस जाता है बरगद वृक्ष के जड़ में और कुएं में गिर जाता है, नीचे सांप काला बैठा हुआ है, कुएं में कोई पानी नहीं है, और जिस वृक्ष के जड़ में उसका पैर फंसा हुआ है उसको काले और उजले दो चूहे काट रहे हैं, बड़ा विक्षिप्त है, उसे बहुत प्यास भी लगा था। उसी समय ऊपर से हनी मधुमक्खी का छाता लगा था और ऊपर से कुछ हनी गिरने लगा तो चाटने लगा, और चाटते चाटते वो भूल गया कि चूहे काट रहे हैं, नीचे सांप बैठा हुआ है, कभी हम खत्म हो जाएंगे। तो और कोई नहीं, हम सब लोग हैं, हम संसार भी बट वृक्ष में फंसे हुए हैं, और जिसे फंसे हुए दिन और रात दो चूहे काट रहे हैं, नीचे काल हमारा प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन चपल सुख में हम लगे हुए हैं। चपल बूंद बूंद वो गिर रहा था मध, और उसी में वो आनंदित था। इसीलिए गोविंद दास कविराज कहते हैं, सीत आतप बात बरिषण ए दिन जामिनी जागिरे, विफल से बिन कृपण दुर्जन चपल सुख लवला गिरे। चपल सुख में वो कृपण वो मूर्ख लगा हुआ है। प्रभुपाद तात्पर्य में बार बार इसको के विषयी व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति ऐसे चपल सुख में ला करके सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। इन सकाम कर्मियों को जगाने के लिए यदि गीता भागवत का उपदेश दिया जाए तो बड़ा कठिन होगा। उन लोगों को वैसा ही उपदेश देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक्सपर्ट प्रीचर वह है जो प्रचार करना जानता है। यदि आप भले पीएचडी डिग्री पास किए हो, ले लिए हो, और छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो ए मतलब एप्पल का अगर पढ़ाओगे तभी पढ़ेगा। तो नारद जी उसके स्टैंडर्ड में आकर के प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं अत्रते कथयिष्ये अमुम अमुम, इस प्रसंग में तुम जो प्रश्न किए हो ना कि अत्यंतिक कल्याण क्या हो गया, इस प्रसंग में अब मैं तुम्हें एक कहानी कहूंगा, इतिहास। इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी को इतिहास कहा जाता है। कहते हैं अब मैं इतिहास कहूंगा, वो कैसा इतिहास है? पुरातनम। पूरा इस शरीर को पूरा कहा गया है, नौ द्वार पूरा, इसमें नौ द्वार हैं, दो आंख, दो कान, दो नाक, मलमूत्र द्वार और मुंह, ये नौ द्वार हैं और इसमें नौ गेट हैं और इसका जो स्वामी है वो पुरंजन है, पुर में रहने वाला वो पुरंजन है। इस नौ गेट से निकलते क्या हैं? थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहां भी शब्द आया हुआ है पुरंजनस्य चरितम, पुरंजन का चरित्र। पुर ये शरीर जो है नौ द्वार वाला, ये पुर है, सिटी है, इसमें नौ द्वार हैं। चरितम उसके चरित्र को, निबोध भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 6 में आया हुआ है, निबोध में है दुर्योधन कहता है गुरुदेव मेरे पक्ष में कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं? मैं कह रहा हूं निबोध पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महति चमम। जब पांडव सेना को बताना हुआ, दुर्योधन ने कहा पश्यताम, देखिए वो सामने थे, जो सामने होता है उसको दिखाने के लिए पश्यताम कहते हैं और जो पीछे हैं जिसको देख नहीं सकते हैं कहते हैं निबोध, स्मरण कीजिए, क्योंकि लड़ाई के मैदान में आए हैं, पीछे नहीं देख सकते हैं, पीठ नहीं दिखा सकते हैं, निबोध हमें। तो वही बात यहां पर कहते हैं चरितम निबोध, समझने का प्रयास करो, है नहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, पश्चाताम नहीं कहते, कहते निबोध समझो। गदतो मम, जिसको मैं सावधानी से तुम्हें बता रहा हूं तुम सावधानी से उसको समझने का प्रयास करो। तो वही मैं बात कर, हम लोग भी निबोध करें कि नौ द्वार है, इन नौ द्वार से निकलता क्या है? नौ द्वार से क्या निकलता है? चलिए नीचे के द्वार को ले लीजिए, मलमूत्र द्वार को, उसे क्या निकलता है? पवित्र वस्तु निकलता है, अपवित्र वस्तु निकलता है, कोई उसको प्रिजर्व नहीं करता है मलमूत्र को। हॉस्पिटल में शायद करते होंगे लोग, है नहीं, चेकअप कराना होता है तो ले जाना पड़ता है, पता नहीं क्या करते हैं। एनीवे मलमूत्र द्वार से मलमूत्र कोई प्रिजर्व नहीं करता है, आंख से कीचड़ निकलता है कोई प्रिजर्व नहीं करता है, नाक से विदेशी घी निकलता है कोई प्रिजर्व नहीं करता है, कान से कोट निकलता है और मुंह से कफ बात, कफ थूक निकलता है कोई प्रिजर्व नहीं करता है। तो ये शरीर है क्या? ये प्रमाण दे रहा है, अरे पानी के तालाब से पानी निकलेगा, यदि शरीर से ये निकल रहा है इसका मतलब क्या हुआ? मल मूत्र।